आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सर ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ। हस्तिनापुर की दो महारानियां थीं, गांधारी और कुंती। महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और महाराज पांडु की पत्नी कुंती, दोनों महारानियां महाभारत के युद्ध में हमेशा अपनी अपनी खास भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। गांधारी गांधार के राजा सुबल की बेटी और शकुनी की बहन थीं। वो शुरू से ही बहुत शांत और सुशील स्वभाव की थीं। हमेशा शिव भक्ति में रहती थीं। उन्हें भगवान शिव से शत पुत्रवती यानी 100 बेटों की मां होने का आशीर्वाद मिला था। गांधारी को भगवान शिव से मिले 100 बेटों की मां होने के वरदान वाली बात जब हस्तिनापुर में पितामह भीष्म को पता चली तो उन्होंने गांधार के राजा सुबल के पास अपने भाई के बेटे धृतराष्ट्र के साथ गांधारी के विवाह का प्रस्ताव भेजा। महान चंद्रवंश की ओर से खुद आए विवाह प्रस्ताव को कौन मना कर सकता था भला। राजा सुबल इस रिश्ते से बहुत खुश थे। इस तरह गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से हो गया। कुंती राजा कुंती भोज की बेटी थी। बचपन में पिता के कहने पर एक बार कुंती ने राजमहल में आए अतिथि महर्षि दुर्वासा की बड़ी श्रद्धा से सेवा की थी। महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे, पर कुंती को छोटी सी उम्र में ही सच्चे सेवा भाव के लिए महर्षि दुर्वासा से वरदान में एक मंत्र मिला था, जिससे वो आगे जीवन में जब चाहे किसी भी देवता का आवाहन करके आशीर्वाद के रूप में उनसे एक बेटा पा सकती थी। महर्षि दुर्वासा ने अपनी दिव्य दृष्टि से कुंती का भविष्य तभी देख लिया था। वो जान गए थे कि कुंती को अपने पति से संतान सुख नहीं मिलेगा, इसीलिए उन्होंने कुंती को वो वरदान दिया था। यदुवंश के राजा शूरसेन भगवान श्री कृष्ण के पितामह यानी दादाजी थे। उनके फुफेरे भाई राजा कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। शूरसेन और कुंती भोज का आपस में बड़ा प्यार था। शूरसेन ने कुंती भोज से कहा था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी उसे वो कुंती भोज को दे देंगे। कुछ समय बाद शूरसेन की एक बेटी हुई। राजा शूरसेन ने बेटी का नाम रखा प्रथा। जब प्रथा कुछ बड़ी हुई तो शूरसेन ने अपना वचन निभाते हुए उसे कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने बड़े प्यार से प्रथा का नाम कुंती रखा। इस तरह कुंती राजा भोज की बेटी कहलाई। राजा कुंती भोज ने बेटी कुंती के विवाह के लिए बहुत बड़े स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर में देश विदेश के कई राजा महाराजा और राजकुमार पधारे थे, पर स्वयंवर में कुंती ने महाराज पांडु को ही अपना पति चुना। इस तरह कुंती का विवाह महाराज पांडु के साथ हुआ। एक ही परिवार में विवाह होने से गांधारी और कुंती जेठानी और देवरानी हो गईं। दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। गांधारी बड़ी थी और वो गर्भवती भी कुंती से पहले हुई, लेकिन अजब संजोग हुआ कि कुंती का बेटा पहले हो गया। हुआ यूं कि जब कुंती को महाराज पांडु के अभिशाप वाली बात का पता चला कि एक ऋषि के श्राप की वजह से महाराज पांडु पिता नहीं बन पाएंगे, तब महारानी कुंती ने पति को महर्षि दुर्वासा से मिले वरदान की बात बताई। महाराज पांडु को उस बात को जानकर बड़ी शांति मिली। उसके बाद महारानी कुंती ने वरदान में मिले मंत्र के प्रभाव से 3 बेटों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। कुंती का बेटा पहले पैदा हो जाने से गांधारी के मन में देवरानी कुंती के लिए न जाने क्यों ईर्ष्या पैदा हो गई। उनकी ईर्ष्या धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि पूरी तरह उजागर होने लगी और सब ये जान भी गए। कुंती का बेटा पहले हो जाने से गांधारी इतनी तिलमिला गई थी कि सेविकाओं से कहकर उन्होंने अपना गर्भ ही गिरवा दिया था। वैसे कहते हैं कि बच्चा न होने की वजह से तिलमिलाकर गांधारी ने एक धारदार हथियार से खुद ही अपने पेट पर मार लिया था, जिससे गर्भ एक मांस के लोथड़े की तरह बाहर आ गया था। अब संजोग की बात है कि उस समय महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए हुए थे। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत उस मांस के लोथड़े को शुद्ध पानी से धोकर साफ किया। धोने से उसके 100 टुकड़े हो गए। फिर वेदव्यास जी ने 100 घड़े मंगवाए। हर एक घड़े में एक खास घी डालकर एक एक टुकड़ा हर घड़े में रखकर घड़ों को अच्छी तरह से बंद कर दिया। उन्होंने सबसे कह दिया था कि इन घड़ों को 2 साल तक कोई नहीं खोलेगा। 2 साल बाद जब पहला घड़ा खोला गया तो उससे एक बेटा और आखिरी घड़े से एक बेटी मिली। लेकिन बेटे के आते ही एक साथ बहुत सारे अपशकुन हो गए थे, इसीलिए जानकारों ने इस बेटे को त्याग देने की सलाह दी थी। मगर बेटे का मोह माँ बाप कहाँ छोड़ पाते हैं, सो यहाँ भी वही हुआ। वही बेटा दरअसल दुर्योधन था। जानकारों की वर्षों पुरानी बात को समय ने साबित भी कर दिया। किस तरह से कौरवों का सर्वनाश हुआ ये हम सब जानते हैं। गांधारी की ईर्ष्या ने उनके बच्चों में भी पांडवों के लिए नफरत भर दी थी। इस तरह महाभारत युद्ध की नींव बचपन में ही पड़ गई थी। कुंती से ईर्ष्या के चलते गांधारी से लगातार पाप होते गए। हम सब ये जानते हैं कि उन्होंने अपने पति महाराज धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी, पर अफसोस कि उस पट्टी ने सिर्फ उनकी आंखें ही नहीं ढक रखी थी बल्कि बुद्धि विवेक भी ढक लिया था। वो पति धृतराष्ट्र और बेटे दुर्योधन के सारे प्रपंच को जानने के बाद भी उन्हें रोक नहीं पाई, और जब पति और बेटे के षड्यंत्रों का नतीजा सामने आया तब वो बचने का कोई उपाय ही नहीं कर पाई। यहां तक कि पितामह भीष्म ने गांधारी के परिवार को भूखा मार दिया, तब भी गांधारी कोई विरोध नहीं कर पाई। गांधारी की इस चुप्पी ने ही कौरवों के सर्वनाश को बढ़ावा दिया। गांधारी की गलती की वजह से ही उनके 100 पुत्र मारे गए। एक दिन भोजन तैयार करने के लिए जो गर्म जल रखा था उसे उन्होंने जमीन पर बहा दिया। जहां उन्होंने जल को बहाया था वहां चींटी का घर था, जिसमें चींटी ने 100 अंडे दिए थे। गर्म पानी की वजह से सभी अंडे नष्ट हो गए। तब चींटी ने गांधारी को श्राप दिया था कि जिस तरह मेरे बच्चे आज तड़प कर मरे हैं उसी तरह तुम्हारे भी सारे बच्चे एक दिन तड़प तड़प कर मरेंगे। गांधारी से एक और पाप हुआ था, वो था उनका अपने ही बच्चों की लाश पर चढ़कर अंग खाना। हुआ यूं कि गांधारी अपने बच्चों की मृत्यु के दुख में बिल्कुल बेसुध हो गई थी। सबके चले जाने के बाद भी गांधारी बच्चों की लाशों के पास ही बैठी रही, वो वहां से कहीं नहीं गई। बहुत देर बाद उन्हें भूख का एहसास हुआ, तब वो बहुत परेशान होने लगी। उस समय वहां खाने को क्या मिल सकता था भला, कोई आसपास भी नहीं था। पर उन्हें उस समय कहीं से आम की सुगंध आती महसूस हुई। वो बड़ी मुश्किल से उठकर सुगंध के पीछे पीछे गई। उन्हें अंधेरे में आम का एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर आम झूल रहे थे। गांधारी ने कोशिश की पर आम जरा ऊपर थे। बेसुध गांधारी ने आसपास से कुछ बड़े पत्थर उठाए और उन्हें एक पर एक रखकर चढ़ गईं। गांधारी ने जब आम तोड़कर खाया तो उनकी भूख मिटी और उन्हें जरा होश आया। जब होश आया तब उन्होंने देखा कि जिन्हें वो पत्थर समझकर चढ़ गई थीं, वो सारे पत्थर दरअसल उनके बेटों की लाशें थीं। गांधारी को अपने इस पाप से इतनी ग्लानी हुई कि उन्होंने वासुदेव श्री कृष्ण को खूब कोसा। गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश के समूल नाश का श्राप दिया था, जो भविष्य में पूरी तरह फला भी। आखिर में महारानी कुंती के बारे में और दो बातें कह लूं। दरअसल महाराज पांडु की मृत्यु के बाद बेटों का पालन पोषण पितामह भीष्म की देखरेख में कुंती ने ही किया था। अगर देखा जाए तो महारानी कुंती का पूरा जीवन ही दुख तकलीफों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मन में कौरवों के लिए जरा भी दुर्भावना नहीं आने दी। लाक्षाग्रह वाली घटना से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध तक कुंती हमेशा निरपेक्ष ही बनी रही। वो हमेशा चाहती थी कि कौरव और पांडव सभी मिलजुल कर प्रेम से रहें। यही वजह थी कि राजमाता कुंती सिर्फ 5 गांवों की संधि से भी संतुष्ट थी, लेकिन कौरव तो युद्ध चाहते थे। आखिर महायुद्ध हुआ और वो सारे मारे गए। युद्ध खत्म होने के बाद कुंती कुछ साल धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ महल में ही रही, लेकिन जब महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी राजमहल छोड़कर जंगल जाने लगे तब कुंती भी उनके साथ जंगल चली गई। तो ये थी हस्तिनापुर की 2 महारानियों की दास्तान। युद्ध से बस यही हासिल होता है।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।